ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
दिव्य ज्ञान की व्याख्या भगवान अर्जुन को कर रहे हैं और हमारे पिछले कुछ बुधवारों से हम इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य इसकी चर्चा कर रहे हैं और आज इस श्लोक का भाग तीन रहेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद इस प्रकार से है, श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो यहां भगवान अर्जुन को न केवल एक मित्र के नाते, न केवल एक गुरु के नाते, यहां पर भगवान एक अवतार होने के नाते अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो ये भगवद गीता क्यों सुनाने आते हैं और भगवद गीता के द्वारा वो धर्म की स्थापना किस प्रकार से करते हैं। तो पिछले बार हमने पिछले श्लोक से संबंध ये समझा था और धर्मस्य शब्द की जो व्याख्या है हमने प्रारंभ किया था इस शब्द को समझने। तो आज हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे। पिछली बार हमने जो जो डिस्कस किया तो छठे श्लोक में भगवान अजन्मा होने पर भी जन्म लेते हैं, ये जो विरोधाभास है इसको भगवान ने प्रस्तुत किया। हालांकि भगवान में कोई विरोधाभास हो ही नहीं सकता, परंतु भगवान की एक व्याख्या है कि भगवान विरोधाभास का समन्वय अपने अंदर कैसे करते हैं। और सातवें श्लोक में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, भगवान के ऐसे विलक्षण अवतरण का कारण भगवान बता रहे हैं। तो हमने यदा यदा ही इसका अर्थ समझा, जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। तो यदा यदा ही का ये अर्थ हमने समझा। तत्पश्चात पिछले बुधवार को धर्मस्य इस शब्द की व्याख्या हमने प्रारंभ की। तो पांच परिभाषाएं धर्म की श्रील प्रभुपाद ने ये पांच परिभाषाएं दी हैं, फाइव डेफिनेशंस ऑफ धर्म। धर्म अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद मींस डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर वी ह्यूमन बीइंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ सोल, कल्चर विच डिस्क्रिमिनेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, प्रिपरेटरी कोर्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ एंड सिक्योर नेक्स्ट लाइफ। मैंने देखा प्रभुपाद ने इन पांच परिभाषाओं में पूरे धर्म का विवरण दे दिया। जैसे कहते हैं ना, धर्म एट अ ग्लांस। तो ये एक स्लाइड में प्रभुपाद ने इन पांच परिभाषाओं के द्वारा, डेफिनेशंस के द्वारा, यदि हमें धर्म समझना है, समझाना है, उसके पालन करना है तो ये पांच परिभाषाएं हम समझ लें। तो हमने सबसे पहली परिभाषा ली कि श्रील प्रभुपाद के अनुसार धर्म किसे कहते हैं। तो पहली परिभाषा प्रभुपाद ने दी है डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो इसमें श्रीमद भागवत के छठे स्कंद का यह श्लोक हमने लिया, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जहां यमराज जी ये श्लोक यमदूतों को सुना रहे हैं। यमदूतों में गलत फहमी हो गई थी कि उन्हें लग रहा था कि उनके यमराज ही सर्वस्व हैं, और यमराज जी ने उस गलत फहमी को दूर करते हुए ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, जिसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत दफा प्रवचन दिया और अपने पुस्तकों में कन्वर्सेशंस में प्रभुपाद ने ये श्लोक का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले शब्द वो बन जाते हैं धर्म ग्रंथ। तो जो भी भगवान अपने मुख से उच्चारण करते हैं वो है धर्म ग्रंथ। तो भगवद गीता जिसकी हम इतने वर्षों से चर्चा कर रहे हैं, भगवद गीता जो कि इतने सदियों से बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, साधक हैं, भक्त हैं, अपने जीवन का सर्वस्व माने हैं, वो भगवद गीता इसका पोजीशन क्या है? धर्म। और हमने भगवद गीता और धर्म को समझा इन दो श्लोकों से, प्रथम श्लोक गीता का और गीता का अंतिम श्लोक, दोनों के यदि अक्षरों को ले, प्रथम अक्षर को और अंतिम अक्षर, गीता के प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर को लें तो धर्म ये शब्द बन जाता है। और धर्म ग्रंथ जो कि सर्वोच्च प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे शास्त्रों में किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए ये तीन प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण ये हमें किसी वस्तु का ज्ञान तो दे सकते हैं, परंतु बहुत सीमित ज्ञान देते हैं। ये पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान से हम प्राप्त नहीं कर सकते। और प्रभुपाद ने इस पर जोर इसलिए दिया क्योंकि साधारणतः हम प्रत्यक्ष, इस कलयुग में लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर इतना जोर देते हैं। क्यों जोर देते हैं? कि जब तक हम देखें नहीं, बहुत बार इसके पीछे मनोभाव ये रहता है लोगों का कि भाई ये अगला व्यक्ति दिखा तो पाएगा नहीं भगवान को, चलो फिर मेरे लिए एक बहाना हो जाएगा जिसको मैंने सिद्ध कर दिया कि ये भगवान का अस्तित्व नहीं, क्योंकि ये दिखा नहीं पा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखा नहीं पा रहा है। तो जब भी भगवान की चर्चा होती है या भगवान के अस्तित्व की चर्चा होती है तो प्रभुपाद हर समय कहा करते थे, लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, कितने बार आपने सुना होगा, दिखाओ तो जाने। हमारे कितने हरे कृष्णा के प्रचारक हैं, अक्सर उनके प्रचार में ऐसे लोग उनको मिलते हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं। हमारे गीता कोर्स में जब भी हम लेते हैं कोई ना कोई एक हाथ ये प्रश्न पूछता ही, क्या आपने देखा है, क्या आप दिखा सकते हो? तो प्रभुपाद लॉजिक इस्तेमाल किया करते थे, और ये जो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र से लोग भौतिक इंद्रिय भोग को भी न्याय शास्त्र से ही इस्तेमाल कर भोग करते हैं। जैसे हमारे गीता कोर्स में हम एक एक्सरसाइज करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में, यह सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण कितना ज्ञान हमें दे सकता है। आप आइए, घबराइए मत। तो हमारे गीता कोर्स में हम ये एक्सरसाइज करते हैं। अब इनको देखकर बताइए जो नहीं जानते हैं, देखकर क्या लगता है क्या नाम हो सकता है इनका? दिखने से क्या नाम इनका होगा? दिखने में कैसे दिखते हैं नाम? हाँ, शंकर प्रभु, सुंदर प्रभु। और देखने से क्या लगता है कि इनको कौन सा रंग पसंद होगा? इनको कौन सा व्यंजन पसंद होगा? देखने से कुछ समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, ये है न्याय शास्त्र पर आधारित। इन व्यक्ति को देखकर हम अनुमान लगाना शुरू करते हैं। अभी क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष देखा और अनुमान लगाना शुरू किया कि क्या नाम हो सकता है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, बंगाली, क्या नाम हो सकता है? और जो भी हमारे मन में आ गया बोल दिया, ठीक है ये नाम। अब देखिए, लोग भगवान को भी इसी प्रकार से अनुमान लगाकर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं कि मेरे अनुसार भगवान दिखने में कैसे होंगे, तो उनका नाम कैसा होगा? दिखाई नहीं दे रहे तो नाम ही नहीं होगा, तो कोई नाम बेनाम। मेरे अनुसार यदि कोई दिख भी रहे हैं भगवान जैसे, तो क्या उनको पसंद होगा क्या नापसंद होगा? तो सबसे सरल क्या है इन व्यक्तियों के बारे में जानना, सबसे सरल उपाय क्या है, इनसे पूछिए। हम यहां पर पूरे 3 घंटे अनुमान लगाते जाएंगे। हर एक व्यक्ति को माइक दिया जाए तो हर एक व्यक्ति अलग अलग नाम बताएगा, अलग अलग इनकी पसंद नापसंद बताएगा। क्या नाम है आपका?
रोहित।
रोहित नाम है इनका। तो किसी ने अनुमान लगाया था रोहित नाम हो सकता है? नहीं। कौन सा रंग पसंद है आपको? बोलिए।
व्हाइट।
अब देखिए, इसमें भी एक ट्रैप है कि प्रत्यक्ष रूप में हमने देख लिया कि व्हाइट शर्ट पहने हुआ है तो व्हाइट शर्ट अच्छा लगता होगा, लेकिन इनसे पूछिए कि हर दिन व्हाइट शर्ट पहनते हैं क्या? नहीं। तो कई बार जब इसको कहते ना आजकल की भाषा में तुक्का, जब वो लग जाता है तो हम कहते हैं कि देख हुआ ना, प्रत्यक्ष प्रमाण में दम है कि नहीं। कौन सा व्यंजन पसंद है आपको? व्यंजन व्यंजन।
राइस।
बोलिए बोलिए।
राइस।
अब देखिए, हम कई बार राइस को व्यंजन ही नहीं मानते। हमने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था, या जो बोलते हैं ना, हमने पता नहीं कितने ख्याली पुलाव पका लिए थे उस राइस के। तो कितना आसान, कितना समय लगा ये 3 चीजों को जानने के लिए, इनका नाम, इनका पसंदीदा रंग और व्यंजन, कितना समय लगा बोलने में इनको? केवल 1 मिनट भी नहीं, उससे भी कम। बीच बीच में मैं बोल रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो 1 मिनट से भी कम नहीं। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। आप बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यहां पर जब प्रभुपाद ने इन 3 प्रमाणों में शब्द प्रमाण को सबसे सर्वोपरि बताया है, तो जितना आसान हमारे रोहित प्रभु से पूछकर जानना था उतना आसान है धर्म को जानना। ये एक्सरसाइज इसके लिए था। कई बार लोग, अरे धर्म को जानना, पता नहीं धर्म कैसे, उसकी क्या परिभाषा, कैसे समझें, किसको क्या समझाएं। इतना आसान है धर्म को जानना। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान कह रहे हैं ये मेरा नाम है, मेरा नाम है कृष्ण, मेरा नाम है गोविंद, वृंदावन में मुझे क्या पुकारते हैं, द्वारका में क्या पुकारते हैं, मथुरा में, सब स्पेसिफिक दिया है। मुझे कौन सा रंग पसंद है, कौन से व्यक्ति पसंद है, क्या नापसंद है, मेरा एड्रेस क्या है, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, टिकट भी दे देते हैं जाके ये लोग, फिर भी हम प्रश्न पूछते हैं, क्या यही है भगवान। तो इसलिए प्रभुपाद के अनुसार जो सबसे पहली परिभाषा धर्म की, कि भगवान के द्वारा दिए गए जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है कि धर्म क्या है और भगवान क्या है। फिर हमने पिछली बार एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा की थी कि शब्द प्रमाण में भी हम धोखा खा सकते हैं यदि उसे हम पारंपरिक तरीके से न समझें। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म मीमांसा सुनाया गोवर्धन लीला में, और कर्म मीमांसा है क्या, नास्तिकवाद एक प्रकार से। तो भगवान नास्तिकवाद सुना रहे हैं और हिरण्यकश्यपु सातवें स्कंद में देहात्म बुद्धि का ठीक ठीक ज्ञान दे रहा है हिरण्याक्ष के परिवार वालों। तो अब कौन सा प्रमाण सत्य प्रमाण होगा, हमें उसे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में समझना है, केवल टेक्स्चुअल मीनिंग में नहीं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में उसको समझना है। उसके पश्चात हमने श्रवण बलदेव विद्याभूषण जो शब्द प्रमाण के अंदर क्या है, श्रवण है, तो श्रवण के जो स्तर हैं वो समझाए, श्रवणम मननम निधि ध्यासनम वंदनम, हियरिंग कंटेम्पलेशन एप्लीकेशन फाइनली एक्सप्रेशन, तब जाकर शब्द प्रमाण पूरा होता है, तब जाकर वो धर्म को समझना पूरा होता है। और फिर अंतिम हमारा स्लाइड ये रहा, धर्म श्रील प्रभुपाद के अनुसार हम मनुष्यों के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये शरीर यदि एक यंत्र है तो इस यंत्र को चलाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल धर्म के रूप में या ग्रंथों के रूप में हमें भगवान ने दिया है। फीचर्स ऑफ द मशीन, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या बताते हैं, फीचर्स बेनिफिट्स हाउ टू यूज द मशीन और वार्निंग्स इन रिगार्ड्स मिसयूज। तो धर्म शास्त्र हमें ये सब बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे अंदर कौन सी शक्तियां छिपी हैं, क्या उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि। अब हम जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया तीसरी परिभाषा जो उन्होंने दी है धर्म, श्रील प्रभुपाद के अनुसार उन्होंने कहा हमारा वास्तविक स्वरूप, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ द सोल। अब ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा धर्म को पहचानना कितना आसान हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई तुम इस धर्म के हो, ये उस धर्म का है, मैं इस धर्म का हूं। प्रभुपाद ने एक बहुत ही सरल तरीके से हमारे रोजमर्रा के उदाहरण से प्रभुपाद ने समझाया हम। प्रभुपाद ने ये तीन उदाहरण अपने प्रवचनों में लिए, नमक, शक्कर और मिर्च, प्रभुपाद के श्रीमुख से निकले गए ये तीन उदाहरण। प्रभुपाद ने पूछा नमक धर्म क्या है, यदि नमक कोई एप्लीकेशन भर रहा है तो उस एप्लीकेशन में यदि एक कॉलम है व्हाट इज योर रिलीजन, तो नमक क्या लिखेगा, नमकीन, कोई शक है आप लोग, नहीं ना। तो प्रभुपाद ने इतना सरल उदाहरण दिया, नमक का धर्म नमकीन होना, शक्कर का धर्म मिठास। अब देखिए बहुत लोग आजकल खाते हैं ना शुगरलेस स्वीट, है ना, शुगर फ्री, शुगर फ्री स्वीट्स। तो ठीक है, यहां तक तो सुना है आपने, परंतु कभी यह सुना है स्वीटलेस शुगर, शुगर फ्री स्वीट परंतु स्वीटलेस शुगर? हरे कृष्ण। हम फिर से भगवान द्वारा कहे गए शब्द कहना चाहेंगे अभी, सेलफोन निकालकर बंद कर दीजिए, ये तो भगवान के बहुत से अवतार आएंगे अभी। माता जी किया, बंद किया। तो प्रभुपाद ने तीसरा उदाहरण दिया मिर्च का, मिर्च उसका स्वभाव, उसका स्वधर्म है तीखा, तीखापन होना। तो यहां पर प्रभुपाद ने ये बहुत ही सरल तरीके से ये उदाहरण के द्वारा ये समझाने की कोशिश की, उसी प्रकार से जीव का स्वधर्म क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास नित्य, वो बहुत महत्वपूर्ण है, नित्य दास। तो यदि इसका रिवर्स लॉजिक हम लगाएं इस श्लोक का, तो क्या समझ में आएगा, कृष्णेर स्वरूप होए जीवेर नित्य बॉस। तो वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और हमारा स्वरूप, यदि हम नित्य दास हैं तो वो नित्य हमारे स्वामी होने ही चाहिए। तो अब हम लोग यदि भगवान के नित्य दास हैं तो हम इस भौतिक संसार में अपने स्वाभाविक स्वरूप में क्यों नहीं स्थित, क्यों हमें ये धर्म के विषय में जानना पड़ रहा है? जैसे यदि नमक को पूछा जाए कि क्या तुम नमकीन होने के लिए कोई सेमिनार अटेंड करते हो, शक्कर को पूछा जाए कि तुम मीठा होने के लिए कोई सेमिनार अटेंड किया है, तो क्यों हम लोगों को सेमिनार अटेंड करना पड़ता है? हमारे धर्म को जानने के लिए क्यों हमको इतना सब कुछ जानने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, पालन करने की आवश्यकता है? क्योंकि हम हमारे वास्तविक धर्म की विस्मृति में। तो एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाएंगे अभी, और इस वीडियो में, ये मराठी में है इसलिए जो मराठी नहीं समझ पाएंगे तो उनको पहले ही समझा दें कि एक हमारे बचपन की एक कहानी है उसको दर्शाया गया है, और फिर उसके पश्चात हम जो मुद्दा है वो समझाएंगे। तो बचपन की हमारी एक कहानी हमको सुनाई गई थी कि एक राजहंस का छोटा बच्चा, वो कहां गुम हो गया, बदकों के अंदर। बदक, बदक जानते हैं, डक, उसमें गुम हो गया। और फिर कैसे वो वहां से, क्या उसकी व्यथा होती है जब वो उन बदकों के बीच में होता है, तो क्या उसकी दशा होती है? और आपको उस दृष्टिकोण से देखना है कि हम भगवान श्री कृष्ण जो कि राजहंस है उनके पिल्ले, और इस भौतिक संसार में बदकों के बीच में घूम रहे हैं, क्वैक क्वैक करते हो। लाइट्स,
Thank you. बद के पीले सुरेख होते गुरू पवेड़े पिल्लू तया तेक एका तया होती बद के पीले सुरेख होते गुरू पवेड़े पिल्लू तया तेक
हमारी भी स्थिति उस पिल्लू के समान कि जीव का स्वरूप जो कि उस हंस के पिल्लू के समान इतना सुंदर परंतु अपने आप को कुरूप मान रहा था। क्यों? इस भौतिक संसार में जो बदक हैं उनके संगति में रहते हुए जब उसको दुत्कार कर बहिष्कृत किया गया तो वो अपने स्वरूप को भूल गया, परंतु जब वो सही संगति में आया तो हमने देखा किस प्रकार से उसके स्वरूप को निहारा गया और उसके स्वरूप की जो सही स्थिति है उसमें उसे लाया गया। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो राजहंस हैं और हम जिस प्रकार से वो छोटा सा बच्चा उस राजहंस का विलाप कर रहा है, रो रहा है, अश्रु प्रवाहित कर रहा है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जीव उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में भगवान को भूला हुआ शोकाश्रु सागरात, एक सागर निर्माण कर लिया है उसने अपने अश्रु। और कौन से अश्रु? शोक अश्रु, शोकाश्रु सागरात। और जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल उसको प्राप्त होते हैं तो भगवान के चरण कमल विशोषणम, वो पूरे जो अश्रु का जो समुद्र है उसको सोख लेते हैं, और न केवल उसको सोख लेते हैं बल्कि भगवान उसे अपने भक्ति रसामृत सिंधु में तैरने के लिए सिखाते हैं। इसे कहते हैं स्वधर्म। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो दूसरी परिभाषा उन्होंने दी है कि हमारा स्वधर्म हमें पहचानना है, और हमारा स्वधर्म हम कब पहचान पाएंगे, जब हम सही संगति में रहेंगे। सही संगत में हमारी जो वास्तविकता है उसकी पहचान हमें प्राप्त होती है। जैसे कि कितने भक्तों का अनुभव है कि जब हम साधना भक्ति में लगने से पहले जो संगति में रहते थे, तो वो संगति क्या हमें बार बार अपने संग में सुनाती रहती थी, तुम देह हो, तुम शरीर हो, इस शरीर को भोगो, इस शरीर को भोगना, इंद्रिय भोग करना, यही मनुष्य जीवन का सर्वस्व है, उद्देश्य है, और वो हमें परम सत्य लगता। और पहली दफा जब हम साधु संग में आने के बाद ये सुने कि भाई जो बुनियाद पर मैं अपना भौतिक जीवन जी रहा था, उस बुनियाद को ही भगवत गीता का दूसरा अध्याय हिलाकर गिरा रहा है, देहात्म बुद्धि, और तब फिर समझ में आया कि अब तक मैं क्या जीवन जी रहा था और वास्तविक जीवन क्या है। इसे कहते हैं धर्म। तो इसी परिभाषा को और आगे समझते हुए श्रील प्रभुपाद ने तीन चीजें बताई हैं। अब स्वधर्म के संदर्भ में तीन चीजें बताई है, नेचर ऑफ सोल, आत्मा का स्वरूप, एक्टिविटी ऑफ सोल। एक तो स्वरूप पहचानना, स्वरूप पहचानने के बाद आत्मा के कार्य क्या हैं, वो है स्वधर्म, वो जानना, और फिर आत्मा का निजी वास क्या है, कहां आत्मा को रहना चाहिए। तो प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया, नेचर ऑफ सोल इज ही सच्चित आनंद। सत का अर्थ है नित्यता, चित का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, और आनंद का अर्थ है संपूर्ण आनंद में हर समय रहना। ये आत्मा का स्वरूप है। अब देखिए, इस स्वरूप को भूलकर आत्मा इस भौतिक संसार में देहात्म बुद्धि में बदकों के साथ कर क्या रहा है, असत अचित निरानंद। तो कल्पना कीजिए कि जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण आनंद छिपा हुआ है, वो आनंद, वो आत्मा को इस भौतिक संसार में किस प्रकार का जीवन जीना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, ये भौतिक संसार का भ्रम, माया देवी का प्रभाव इतना है कि इस सच्चिदानंद आत्मा को कन्विंस करके रखा है कि यही सुख है, यही परमानेंट है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र माया देवी द्वारा कितनों के ऊपर, जैसे वो मैजिक या जादू की भाषा में कहते हैं ना, मास हिप्नोसिस, कहते हैं मास हिप्नोसिस, कि इतने सारे बद्ध जीवों को इस भौतिक संसार में अलग अलग योनियों में जो है सबको माया देवी ने अपने इस वश में, भ्रम के वश में फांस के रखा। एक्टिविटी ऑफ द सोल, कृष्ण सेवा, जो कि कितने जन्मों में भ्रमण करने के पश्चात फिर कोई बहुत दुर्लभ व्यक्ति है जिसको भक्तों का संग मिलता है, वहां उसको बताया जाता है कि भाई कृष्ण सेवा ये तुम्हारी स्वाधार्मिक एक्टिविटी। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, सेवा ये वर्ड ही पहली बार हम इस कॉन में आने के बाद सुनते हैं, सेवा, अच्छा सेवा, और रेसिडेंस ऑफ द सोल वैकुंठवास। वैकुंठवास का अर्थ है जहां कोई कुंठा नहीं, वो जगह कुंठ का अर्थ है परेशानी, तकलीफ, दुख, इसको कहते हैं कुंठ। तो हम लोग इस भौतिक संसार में हमारे स्वधर्म को छोड़कर इस कुंठित संसार में जो त्रस्त ये खोज रहे हैं, कर्षति, भगवत गीता में भगवान कहते मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कुंठित अवस्था में, जहां ये भगवान आकर अपने धर्म ग्रंथों में बताते हैं कि हमारा वास्तविक परमानेंट निवास स्थान किधर है। तो यहां कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ सोल की और आगे व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से की है। अब पांच प्रश्न, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हम प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत से अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं हैं हम में और जानवरों में, परंतु विशेष इन भिन्नताओं में से है कि हम जिज्ञासा करकर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो धर्म हमें कौन से पांच प्रश्नों का उत्तर देता है? अब धर्म के पास इन पांच प्रश्नों का उत्तर है। धर्म का प्रश्न है एक कि हम ये पांच प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं। आप पूछोगे दिखाओ तो दिखाएंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड व्हाई टू डू। तो कोई फिर से अगर पूछे कि भाई मेरे मनुष्य जीवन में यदि मुझे कोई प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं तो आपके धर्म ग्रंथों में मेरे कौन से प्रश्न हैं और उनके कैसे उत्तर दिए गए हैं? तो कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी बुद्धि इतनी मंद होती है कि उनको पता ही नहीं होता प्रश्न क्या पूछना है, पूछना भी है क्या। अच्छा, तो यहां पर भगवत गीता, भगवान ने अर्जुन को एक अभिनेता जिसको कहते हैं, अभिनेता के रूप में उसको एक अभिनय दिया। कौन सा अभिनय अर्जुन को दिया? क्वेश्चनर, तुम क्वेश्चन पूछो, तुम प्रश्न पूछो। क्यों? क्योंकि कलयुग में जीव इतने मंद बुद्धि के होने वाले हैं कि उनको पता भी नहीं होगा कि पूछना क्या है। तो इसलिए ये सब बताते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात हमारे धर्म ग्रंथ हमें ये प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या किया जाए, ये मनुष्य जीवन का क्या किया जाए। और जब बताया जाता है कि क्या करना है इस मनुष्य शरीर का, तो उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कैसे करना है, हाउ टू डू, कब करना है, जानवर की योनि में जाने से पहले। कहां करना है? भगवत धाम जाने के बाद नहीं, उधर तो एंट्री नहीं मिलने वाली, यहां पर ही करना है। जो करना है यहां पर ही करना है, वहां हाथी न घोड़ा जाएगा, सब कुछ करना है इधर ही करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सारे प्रश्न के बाद अगर अंतिम प्रश्न नहीं बताया जाता तो लोग फिर घर लौट जाते कि क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, क्यों करना है, सबसे महत्वपूर्ण क्यों करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने बहुत से मॉर्निंग वॉक्स में इन प्रश्नों को अलग अलग तरीके से डील करते हुए ये ज्ञान दिया है हमें। अब जो अगला मुद्दा, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि धर्म की व्याख्या क्या है, कल्चर विच डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। अब वो प्रसिद्ध श्लोक जो सबसे फंडामेंटल श्लोक हमारे इस्कॉन फिलॉसफी की शुरुआत में हरेक जो साधक आए उनको ये सुनने आया होगा और फिर वो दूसरों को सुनाया होगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्य एतद पशु भी नराणा। आगे बहुत महत्वपूर्ण आगे का है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीन पशु भी समान। कि चाहे कितना भी कोई सहूलियत से खा ले सो ले मैथुन कर ले रक्षा कर ले, वो जानवर का जानवर ही रहेगा यदि धर्म नहीं उसके जीवन। अधिको विशेषो, क्या कहा गया है कि उसे कहा गया है कि वो विशेष मनुष्य है जिसके जीवन में धर्म है, या जिसने अपने जीवन में धर्म को अपना लिया है, धर्म को पहचान लिया है, धर्म का पालन कर रहा है, वो है विशेष। तो हर एक मनुष्य विशेष बनना चाहता है, व्यक्ति विशेष, सभी विशेष बनना चाहते हैं कि नहीं? और हैं अमृतस्य पुत्र, बताया गया है कि हम विशेष हैं, केवल अभी उस विस्मृति में है, स्मृति उस विशेषता की प्राप्त हमें नहीं हुई है। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं, थोड़ा आपको दिल थाम कर देखना होगा इसे। इसका टाइटल पढ़ लो आप ठीक से कि शास्त्र के अनुसार, धर्म ग्रंथ के अनुसार हमारे अंदर और जानवरों के अंदर दोनों में तुलना यदि की जाए तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हमारे अंदर संस्कृति, धर्म का एक सिनोनिम है, एक और अर्थ धर्म का है संस्कृति। तो हमें संस्कृति दी गई है और संस्कृति का पालन करते हुए, संस्कार जिसको कहते हैं, वो जीवन जब मनुष्य जीते हैं तब वो जानवरों से अलग अपने आप को बोल सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि हां अब मैं जानवरों से अलग हूं, मेरे जीवन में संस्कार, मैं संस्कृति का पालन करते हुए मनुष्य जीवन जी रहा हूं। परंतु जब मनुष्य शरीर में हम संस्कृति का पालन नहीं करते, कल्चर का पालन नहीं करते, तब फिर ये मनुष्य, हितोपदेश में तो कहा गया है पशु भी समाना, पशु के समान, परंतु कलयुग के जो मनुष्य हैं वो पशु से भी बदतर, समान नहीं, बहुत लाइसेंस और पोलाइटली हितोपदेश में कहा गया है पशु भी समाना जब संस्कृति को भूल जाता है मनुष्य। परंतु कलयुग की स्थिति यदि हम देखें तो वो पशु से भी ज्यादा घिनौना बन जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा इसमें क्लैरिटी कम है, परंतु ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मैं पहले आपको बता देता हूं, इसमें एक लाइव क्लोज सर्किट टीवी लगाए होते हैं ना जैसे, उसमें दिखाया गया है कि एक बिजी ट्रैफिक हाईवे पर एक ट्रक कुत्ते को मारकर चला जाता है और कैसे दूसरा कुत्ता उस कुत्ते को बचाता है, और इसके ठीक विपरीत मनुष्य के साथ जब होता है तो वो क्या करता है।
This is truly amazing. Here's a dog who's been hit by a car trying to cross the road. There he is trying to cross the road, and he gets hit and is now just lying in the middle of this busy highway, and a second dog spots him and tries to get over to him. Here's the first dog again being hit. He's lying there in the middle of the road, busy time of the highway, and here comes the second dog who grabs him, not by with his teeth, but actually gets him with his paws around his neck and drags him in the middle of all this traffic off the road to safety, little by little, inch by inch. Finally, some workers spot the dogs and come over and help them. And by the way, the injured dog lived.
मुद्दा हम ले रहे हैं कि धर्म हम मनुष्यों को जानवरों से अलग बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, और इसलिए जो हमने कहा कि जब इस कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन नहीं करते, यहां पर तो केवल यह अपेक्षित था कि उस बच्चे को कोई रुककर संभाल लेता, उतना भी नहीं जिसने उस बच्चे को ठोकर मारकर उसके ऊपर से निकलकर चला गया, और यह सच्ची घटना है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो व्याख्या की धर्म की, और जब श्रील प्रभुपाद ने और हमारे शास्त्रों ने यह बताया है कि कलयुग में जो धर्म की ग्लानी, इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि धर्म की ग्लानी, अधर्म की प्रधानता, इन सब कारणों के वजह से भगवान क्यों इतने अलग अलग प्रकार के हम मनुष्यों के लिए संस्कार दिए हैं, गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार तक, ताकि हम इन संस्कारों में अपना जीवन जीते हुए अपने धर्म को पहचाने। तो मनुष्यों में और पशुओं में अंतर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो पशु हैं उनको ये दो चीजें दी गई है, क्या है? चांसेस और कंडीशनिंग्स। अर्थात कि उनको एक मौका दिया जाता है कि ठीक है, जो भी वो एवोल्यूशन प्रोसेस है वहां से वो विकसित होते 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 वो मनुष्य योनि तक पहुंचता है। परंतु हम मनुष्यों को जो धर्म की समझने की समझ दी जाती है वो क्या है? चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या हम चयन करते हैं, हमारे सोच विचार क्या हैं, उसके अनुसार हम क्या बोलते हैं, उसके अनुसार हम क्या कर्म करते हैं, और फिर उसका क्या परिणाम होता है, और परिणाम के बाद भी हमारी बुद्धि इस प्रकार से बनाई गई है कि केवल परिणाम को देखकर हमारी बुद्धि इतनी विकसित है कि हमें यह समझा देनी चाहिए कि हमें वो फिर से गलत कर्म नहीं करना, केवल परिणाम को देखते हुए। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वी ह्यूमन बीइंग्स हैव जस्ट बाय हियरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस वी कैन रेक्टिफाई एंड फ्रॉम अधार्मिक लाइफ वी कैन गो इनटू धार्मिक लाइफ। तो अब यहां पर धर्म का जो एक और नाम संस्कृति हमने समझा, तो कल्चर, हम लोग कल्चर के विषय में थोड़ा बहुत मनुष्य समाज में इक्का दुक्का यहां वहां बोलते रहते हैं। यस, वी आर हैविंग अ कल्चरल प्रोग्राम। हु इज हैविंग कल्चरल प्रोग्राम? ह्यूमन बींग्स, है ना। कितना कल्चरल प्रोग्राम के बारे में कितना हम लोग सुने हैं, अटेंड भी करते हैं, परंतु कल्चर क्या है, क्या यह समझने की कोशिश की है? केवल साल में एक बार वो जो कल्चरल डांस है किसी राज्य का, या कोई कल्चरल गीत है किसी राज्य का, केवल वो साल में एक बार गाने से हम लोग कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाएंगे। जस्ट बिकॉज वंस अ ईयर आई पार्टिसिपेट इन अ कल्चरल इवेंट डजंट मीन आई एम कल्चर्ड। तो प्रभुपाद के अनुसार संस्कृति, कल्चर की शुरुआत कहां से होती है? व्हाट चॉइसेस वी मेक। अर्थात ये हम कहेंगे यहां पर उपस्थित जितने हमारे गीतामृत के भक्त हैं उनको हम बधाई देना चाहेंगे कि आपने गीतामृत सुनने का चयन किया, चॉइस किया कि नहीं कि आज आकर मैं भगवान की भगवत गीता सुनना चाहूंगा या चाहूंगी। ये चयन करना ही प्रभुपाद के अनुसार दिखाता है दैट वी आर हैविंग सम कल्चर टू बिगिन विथ। इसलिए मैं कहूंगा कि हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए तालियां एक दूसरे को दें कि दूसरे युग के जो लोग हैं वो तो हंसेंगे कि इसके ऊपर तालियां दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में आप लोग जो एकत्रित हो रहे हो यहां पर, ये भी इतने संख्या में एकत्रित होना, इतने समय बैठकर सुनना और पालन भी करना, ये बहुत दुर्लभ बात है कलयुग में। चॉइस, प्रभुपाद अपने एक मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन में कहे, टू चूज कृष्णा, फॉरगेट अबाउट सरेंडरिंग टू कृष्णा, जस्ट टू चूज कृष्णा इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इज द बिगिनिंग ऑफ धर्म। और इसलिए हमारे शास्त्रों में ये जो फ्री विल जिसको कहते हैं, इसको संस्कृत में कहा गया है स्वतंत्रता का रत्न, ये एक रत्न है हमारी, हमारे मनुष्य जीवन में यदि जो सबसे ज्यादा बड़ी पूंजी, मूल्यवान यदि कुछ हमारे पास है तो क्या है? ये स्वतंत्रता का रत्न। और ये जानवरों में नहीं है। जानवरों के विषय में हमने क्या समझा? कंडीशनिंग एंड चांसेस, वी हैव चॉइसेस। यहां पर हम लोग सब एकत्रित होकर भगवद गीता के विषय में उनका पाठ कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये संस्कृति बाय डिफॉल्ट प्रकृति ने डाल रखी है कि हम सही गलत में विवेक बुद्धि से विच्छेदन कर विभाजन कर सही को अपना सकते हैं, गलत को ठुकरा सकते हैं। परंतु जब वही बुरी संगति में वही विवेक बुद्धि को गलत दिशा मिलती है तो हां वो विभाजन करता है, सही क्या है गलत क्या है, सही को ठुकराकर गलत को अपनाता है। इसे कहते हैं धर्म ग्लानी। तब उसमें ग्लानी प्रारंभ होती है। अब तक तो हम पहुंचे नहीं है वहां पर। तो ये है कल्चर की परिभाषा। तो मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ बहुत प्रसिद्ध, भारत में तो हम सुने होंगे, कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहां पर देखिए, ये जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, इसमें सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। हम धर्मस्य की चर्चा कर रहे हैं, अंतिम पुरुषार्थ नहीं, सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म बताया गया। और धर्म, जैसे कि हमने इसके पहले वाले स्लाइड में समझा कि धर्म की एक और परिभाषा है संस्कृति। तो अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या है? इस संसार में इस शरीर यापन के लिए जो हमें सुविधाएं चाहिए, इस शरीर को जिलाने के लिए, उसको कहते हैं अर्थ। तो धर्म यदि कोई पालन करेगा तब जाकर उसके अर्थ में अर्थ होगा। जैसे रामायण में हमने इसकी पहले भी चर्चा एक बार की थी, रामायण में जब राम भरत संवाद आता है, और राम भरत संवाद कब आता है? जब भगवान चित्रकूट पहुंच चुके हैं और भरत रामचंद्र जी को चित्रकूट से फिर अयोध्या ले जाने के लिए जाते हैं। तो रामचंद्र जी भरत को कुछ आदेश निर्देश देते हैं। रामचंद्र जी भरत से कहते हैं, भरत सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरी मौजूदगी अयोध्या में इसका मायना क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मेरी मौजूदगी का परिभाषा क्या, बताओ। क्या मैं व्यक्तिगत रूप से सिंहासन पर बैठा रहूं वो, या मेरे नीतियों के अनुसार अयोध्या का राज्य चले वो? राम राज्य किसे कहते हैं? हालांकि भरत वो कहे कि हां दोनों। तो भगवान ने फिर भरत से कहा कि यदि मैं वहां पर बैठा हूं सिंहासन पर, परंतु मेरी नीतियों का कोई पालन नहीं हो रहा, तो क्या वो रामराज्य है? नहीं। और इसके विपरीत जो बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान राम ने भरत को कही कि यदि मैं वहां पर नहीं हूं सिंहासन पर, परंतु मेरी नीतियों का पालन हो रहा है, तो क्या उसे रामराज्य कहेंगे? अवश्य कहेंगे। तो हमारे दशहरा के प्रवचन में हमने इस बात पर थोड़ी रोशनी डाली थी कि हमारे भारत की स्थिति आज की क्या है। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं, परंतु हमको स्वतंत्रता मिली 1947 में, अंग्रेजों को हमने बाहर निकाल कर फेंका, परंतु जो सत्ता पर आए उन्होंने अंग्रेजियत को नहीं फेंका, अंग्रेजों को फेंका, अंग्रेजियत का आलिंगन किया, तो आज दिन तक क्या हो रहा है? आज दिन तक ये हो रहा है कि हम रामनवमी तो बनाते हैं इस स्वतंत्र देश में, परंतु नीतियां किसकी पालन कर रहे हैं? रावण की। तो फिर राज्य किसका चल रहा है? रावण राज्य। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि राम राज्य स्थापित हो तो जागरूक हो जाइए। और यही समय है जागरूक होने का, नहीं तो फिर 5 साल। रावण राज्य में दशमुखी रावण के साथ जीना होगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो धर्म, हां, रामचंद्र जी ने भरत से कहा, कई बार हमको लगता है कि भाई ये अर्थ काम, खैर मोक्ष के बारे में तो लोग चर्चा ही नहीं करते। देखिए यहां पर ज्यादातर आप देखो चर्चाएं होती हैं इन 4 पुरुषार्थों में से 2 की खाली। मोक्ष उसको निकालो बाहर, धर्म की क्या जरूरत है? क्या चाहिए? अर्थ और काम चाहिए। तो ये जो केवल अर्थ और काम के पीछे भाग रहे हैं और उनको धर्म नहीं चाहिए, बिना धर्म के बिना मोक्ष के केवल अर्थ और काम, इसको कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। कि वो मुर्गी जो सोने का अंडा दे रही थी पीछे से और आगे से उसको खिलाना पड़ता था, तो भाई उसने सोचा कि आगे से खर्चा होता है पीछे से मुनाफा होता है, खर्चा वाला भाग जो है काट दो। ये है कलयुगी मेंटालिटी कि खर्चा वाला भाग काट दो तो केवल मुनाफा ही मुनाफा मिलता रहेगा, सोने का अंडा यहां से मिलता रहेगा। तो होगा क्या, यदि आगे का भाग काट दोगे सोने का अंडा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्ध कुकुटी न्याय। तो यहां पर जो मूल है, बिना मूल के हम सब कुछ अनमोल चाहते हैं। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी से कहा कि मेरा भविष्य बताइए। तो ज्योतिषी ने कहा कुंडली कहां है? तो बिना कुंडली के बताइए। नहीं नहीं, कुंडली लेकर आओ। तो कुंडली लेकर आते हैं, कुंडली देते हैं, तो ज्योतिषी अब कुंडली बांच रहे हैं, पूछते हैं तो आपकी बीवी का नाम प्रीतो है, आप तो अंतर्यामी है, आपके 2 लड़कियां और 1 लड़का है, आप तो सही में अंतर्यामी है, आपने कल ही 10 किलो चावल खरीदे, अरे बाप रे आपको कैसे पता, और उसके पिछले हफ्ते आपने 2 किलो दाल खरीदी वो भी तुर की, और फिर उसके अगले हफ्ते पिछले हफ्ते आपने शक्कर खरीदी थी 4 किलो, आप तो सही में अंतर्यामी गुरु महाराज। उसने कहा अगली बार से कुंडली लाना, ये रेशन कार्ड है। तो होता क्या है कि हम रेशन कार्ड ले लेकर घूम रहे हैं और रेशन कार्ड देखकर कोई भी बता देगा कि तुमने कितने चावल खरीदे, कितना तुमने आटा खरीदा, कितनी शक्कर खरीदी, उसे भविष्य नहीं बोलते। तो बिना धर्म के अर्थ इकट्ठा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। रामचंद्र जी ने भरत से कहा नहीं, अर्थ धर्म के द्वारा अर्जित करो, उसे कहते हैं राम राज्य की शुरुआत। कैसे? कि जितने पुरोहित हैं जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, किसी का गृह प्रवेश है, विवाह संस्कार है, गर्भाधान, जो भी संस्कार, उसके लिए जो भी अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होती है, वो सामग्री का उत्पादन अयोध्या में जो करते हैं, अर्थव्यवस्था वहां से शुरुआत होगी। तो वो अर्थव्यवस्था जो कि धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित है। तो रामचंद्र जी ने भरत से कहा कि यदि एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए इतना घी लगता है, इतने मटके लगते हैं, इतना दूध लगता है, इतना दही लगता है, तो ये सब का उत्पादन जो अयोध्या में लोग करेंगे, किसके लिए करेंगे? धार्मिक अनुष्ठान के लिए। तो इकोनॉमी बढ़ेगी जब लोग धार्मिक अनुष्ठान ज्यादा करेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था जो कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है किसी भी राज्य की, आधारशिला क्या है रामराज्य के अनुसार? धर्म। और फिर उस अर्थ का जब इस्तेमाल यदि काम के लिए भी किया जाए, अर्थात अपने इंद्रिय यापन, काम का अर्थ यहां पर काम वासना नहीं है, अपने इंद्रिय यापन के लिए, तब जाकर कोई मोक्ष, मोक्ष के विषय में वो प्रवृत्त होगा। इसलिए आजकल मोक्ष शब्द यही बहुत डरावना लगता है लोगों को, ऐसा लगता है किसी हॉरर फिल्म का टाइटल है मोक्ष। तो ये जो चार पुरुषार्थ है, इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रामचंद्र जी रामायण में भरत से कहे कि जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है मोक्ष, उस मोक्ष की आधारशिला है धर्म। यदि ये फाउंडेशनल जो यहां पर स्टेप दिख रहा है आपको, ये अगर नहीं होगा तो भूल जाओ। फिर होगा क्या कि फिर अधर्म, अनर्थ, पाप और बंधन, ये होगा। जिसकी, हालांकि हम वो जो धर्म की ग्लानि भगवान समझा रहे हैं उसमें चर्चा करेंगे, तो यहां पर हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो धर्म की चर्चा में हमें ये समझना है कि जो ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं और इसके ऊपर हम कलयुग में जो रह रहे हैं, हमारे लिए पंचम पुरुषार्थ बताया गया है, और वो चैतन्य महाप्रभु जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में अवतरित होते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत से कलयुग आते हैं। हमारा सौभाग्य क्या है कि इतने सैकड़ों कलयुगों में से हम इस कलयुग में पैदा हुए, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतरित होकर हमें पंचम पुरुषार्थ दिए। नहीं तो बाकी कलयुग में चार पुरुषार्थ तक उनको मिल जाता है, ज्ञान और शैली करने की, परंतु इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया है? प्रेम पुमर्थो महान, ये है पंचम पुरुषार्थ। ये हमारा सौभाग्य, हमें मानना चाहिए। अब जो हमने संस्कृति की चर्चा की कि धर्म एक और परिभाषा है संस्कृति, और जो चार पुरुषार्थ हैं, भूख लग रही? बहुत कम लोग हैं जो यहां देख रहे हैं मेरे पास। अच्छा, बाय द वे, ये मेनू नहीं है आज का, आप गलत फहमी में मत रहना। कई बार ऐसे स्लाइड देखने के बाद लगता है कि हाँ, अब कुछ धर्म समझ में आ रहा है। तो संस्कृति, जैसे कि हमने चार पुरुषार्थ की चर्चा की, और चार पुरुषार्थ की नींव, आधारशिला, बुनियाद धर्म है। तो काफी मैंने प्रभुपाद के कुछ कन्वर्सेशंस में रिसर्च किया आज, और उसमें प्रभुपाद के इस कन्वर्सेशन का निचोड़ ये निकला, प्रभुपाद ने कल्चर का एक एग्जाम्पल दिया है या धर्म संस्कृति का एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बर्तन, जैसे यहां पर इतने अलग अलग व्यंजन इस थाली में है, तो ये थाली में जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं उसमें जो विभिन्नताएं हैं वो हमें कैसे दिख रही है? आपका तुरंत फोकस कहां गया? जैसे ये स्लाइड दिखाई गई, ईमानदारी से बोलिए, कोई गलत नहीं है, फोकस कहां गया? कटोरों के अंदर जो है ना, कटोरों पे फोकस गया किसी का कि उनका साइज क्या है, कौन से मटेरियल से बने हैं? हाँ, हो सकता है किसी का अगर बर्तनों का बिजनेस हो तो पहले वो बर्तनों, तो कैसे हमारा फोकस तुरंत किस में जाता है? उनके अंदर क्या है ना? तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि वो तो है, उसे तो ये कहेंगे जैसे कि अर्थ, काम और मोक्ष, वो कंटेंट उसको बोल सकते हैं, परंतु उसको पकड़े हुए कौन है? उसको पकड़े हुए कौन है? धर्म। प्रभुपाद ने कहा है, व्हाट इज होल्डिंग द ऑपुलेंस ऑफ एनीवन्स लाइफ, व्हाट इज ब्यूटिफाइंग द ऑपुलेंस ऑफ एनीवन्स लाइफ इज द कंटेनर ऑफ कल्चर। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद ने दिया कि हम हमारी वैदिक संस्कृति को देखें और हम पाश्चात्य संस्कृति को देखें तो दोनों में अंतर क्या है? यहां पर हम देखते हैं कि कुछ खास ऐसा ऐश्वर्य नहीं दिख रहा, सिंपल दाल चावल है। क्या है? सिंपल दाल चावल है। और पाश्चात्य संस्कृति के प्लेट में क्या दिख रहा है? तड़क भड़क एकदम, सब ऐसे दिखने में चकाचौन। लेकिन जो बर्तन है, वहां का जो बर्तन है वो इतना भयावह है, अर्थात संस्कृति, वो बर्तन इतना भयानक है कि जो सही बुद्धि वाला है उस बर्तन में वो कभी खा ही नहीं पाएगा। और चाहे हम इस वैदिक संस्कृति में दाल चावल खा रहे हो, परंतु हमारी संस्कृति वो ऐसा बर्तन है कि जो उस दाल चावल को और ज्यादा अधिक रसीला बना रहा है, वो है कल्चर। अब मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा मुश्किल जा रहा है समझना, तो अभी हम आपको ये बर्तनों के विषय में बताकर समझाएंगे कि बर्तन का महत्व क्या होता है। आप लोगों को लग रहा है अरे बर्तन के पीछे पड़े हैं, अंदर बताओ क्या है यार, वो तो है, वो तो खैर बोलते ना, दैट गोज विदाउट क्वेश्चन, बट हियर इन इवन द वेसल, इवन द कंटेनर, इवन द यूटेंसिल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग। तैयार है आप लोग? अब आपको हम एक, ये सही पाश्चात्य देश में क्या हो रहा है, ये है ताइवान में एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट। तो जैसे आजकल वो रेस्टोरेंट के थीम्स होते हैं ना, तो ये रेस्टोरेंट का थीम उन्होंने बनाया है टॉयलेट। ये रेस्टोरेंट का थीम है टॉयलेट, कि बैठने का जो सीट है वो कमोड़ है, कमोड़ टॉयलेट का कमोड़ है। अब अच्छा हुआ इंडियन टॉयलेट नहीं बनाया। तो बैठने के लिए अच्छा, यहां तक आप लोग कचकच कर रहे हैं, आगे आप देखिए। तो बैठने के लिए टॉयलेट का कमोड है और खाने के लिए देखिए बर्तन का महत्व समझ में आ रहा है ना। तो यहां नीचे देखो क्या लिखा है, दिस पॉपुलर चेन ऑफ ताइवानीज रेस्टोरेंट गिव्स पेट्रंस द प्लेजर ऑफ ईटिंग, प्लेजर लिखा है, प्लेजर ऑफ ईटिंग फ्रॉम अ टॉयलेट बोल ऑल वाइल सीटेड ऑन अ टॉयलेट बोल। वहां पीछे देखिए वो बैठे हुए हैं उधर, वो कस्टमर रेस्टोरेंट के, और ये जो कटोरा है उस शेप में। अच्छा बाय द वे ये आइसक्रीम है, यदि आप और कुछ सोच रहे थे तो। अब देखो वही आइसक्रीम उसको अलग बर्तन में दिया जाए, तो यहां मुद्दा क्या चल रहा है, संस्कृति। प्रभुपाद ने संस्कृति का उदाहरण दिया है बर्तन। अब एक वीडियो भी है। एक डेढ़ मिनट का वीडियो है इसका, तो उसमें अच्छा वो वीडियो में एक मिनट, वो वीडियो में मैं क्यों वीडियो दिखाना चाह रहा था, क्योंकि उस वीडियो में उस ताइवान के लोग जब इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं तो उनका इंटरव्यू लिया गया है कि कैसा लग रहा है आपको। तो उनका रिस्पॉन्स वो सुनने लायक है। तो आपने उसका वो रिस्पॉन्स सुना, डिस्गस्टिंग, द फूड टेस्ट गुड बट इट इज डिस्गस्टिंग टू ईट फ्रॉम देयर। तो चाहे कितना भी ऐश्वर्य वो लोग अपना बढ़ा लें, परंतु जो वेसल है बर्तन, और उनका ये एनालिसिस है कि इन जो भी वो बर्तन बनाए उन्होंने टॉयलेट का मोड, उसके वजह से उनके जो कस्टमर हैं, वो कस्टमर जो कल्चर्ड कस्टमर है वो नहीं आते वहां पे, जो केवल सुअरी दिमाग के वो लोग वहां पर जाते हैं खाने के लिए। तो प्रभुपाद ने ये जो एग्जाम्पल दिया है कि कैसे संस्कृति एक आधारशिला है, चाहे कितना भी हम ऐश्वर्यशाली बन जाएं, परंतु यदि उसका आधार हमारी संस्कृति नहीं है तो वो ऐश्वर्य किसी काम का नहीं है। और वो ऐश्वर्य इसी प्रकार से लगेगा, इसलिए थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था, क्षमा कीजिएगा उसके लिए, लेकिन जो आजकल भारतीय पाश्चात्य संस्कृति से इतना ज्यादा मोहित हो रहे हैं ये समझाने के लिए कि कंटेनर क्या है उसका, उसका कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। अब श्री प्रभुपाद ने धर्म का एक और उदाहरण सुंदर दिया है। प्रभुपाद ने कहा है धर्म सेतु के समान है। अब सेतु ब्रिज जिसे कहते हैं, रामचंद्र जी ने सेतु, राम सेतु जो बनाया, वो लंका में पहुंचकर सीता को लाने के लिए, हमको लगता है रावण को मारने के लिए नहीं, मुख्य उद्देश्य क्या था, सीता को लाने के लिए। तो वैसे ही प्रभुपाद ने उदाहरण दिया रामचंद्र जी का कि जैसे रामचंद्र जी ने राम सेतु बनवाया वानरों की सहायता से, उसी प्रकार से, और सीता को लाने के लिए, उसी प्रकार से धर्म भगवान लाकर हमें देते हैं। हमारी खोई हुई भक्ति, हमारी जो खोई हुई भक्ति है जिसको रावण ने चुरा लिया है इस भौतिक संसार में, हमारी भक्ति को काम रूपी रावण चुरा रखा है, और हम हैं भी नासिक में जहां पे सीता का अपहरण हुआ था। तो ये उदाहरण बहुत उपयुक्त है। तो जो काम रूपी रावण ने हमारी भक्ति को चुरा रखा है, हम जब धर्म के सेतु का सहारा लेंगे तब जाकर हम खोई हुई सीता को फिर पुनः रामचंद्र जी से मिलाएंगे। और धर्म की परिभाषा प्रभुपाद ने यह दी है कि जो सेतु सीता को राम से मिलाए। तो जो धर्म हमारी खोई हुई भक्ति को हमारे भगवान से मिलाता है वो है सर्वोच्च धर्म। कोई यदि पूछे कि धर्म की परिभाषा क्या है, यहां पर यह बता रहा है, ये उदाहरण बता रहा है कि धर्म की परिभाषा खोई हुई भक्ति को भगवान से मिलाना। और अंतिम उदाहरण प्रभुपाद ने दिया कि धर्म बुनियाद है। ये हमारे जीवन में यदि धर्म की बुनियाद न हो, जैसे कि हमने एक बर्तन का उदाहरण लिया, यहां पर प्रभुपाद बुनियाद का उदाहरण दे रहे हैं, या नींव। एक कहानी से हम आज के हमारे प्रवचन को विराम देना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा जमींदार एक शहर का, उसने बहुत बड़ा मकान बनाया, आलीशान मकान उसने बनाया, और इस आलीशान मकान के उद्घाटन के लिए उसने अपने सारे रिश्तेदार मित्र इत्यादि को बुलाया। तो अब सब लोग आए उसके आलीशान मकान को देखकर वाह वाह कर रहे हैं कि भाई क्या तुमने झूमर लगाए हैं, क्या संगमरमर के फर्श लगाए हैं, क्या इंटीरियर, क्या रंग इत्यादि, सब गुणगान कर रहे हैं उसके आलीशान मकान का। एक व्यक्ति को छोड़कर वो व्यक्ति मुआयना कर रहा है उसके पूरे आलीशान मकान का, और आकर उसको कहता है मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो ये कहता है क्यों, तुमको द्वेष हो रहा है? द्वेष नहीं, चिंता हो रही है, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूं, इंजीनियर हूं, और मैं देख रहा हूं कि ये जो आलीशान तुम्हारा मकान है इसकी नींव बहुत कच्ची है, फाउंडेशन इज वीक, देयरफॉर आई एम वरीड, आई एम नॉट अट्रैक्टेड बाय ऑल दीज इंटीरियर्स व्हिच यू हैव पुट, आई एम वरीड अबाउट फाउंडेशन। तो ये कहानी समझाती है कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, वो केवल झूमर, चकाचौन फर्श और रंग इत्यादि से प्रभावित नहीं होते, वो कहां पहुंचते हैं, उस व्यक्ति के नींव तक पहुंचते, उसकी बुनियाद तक जाते हैं। किसी समाज के, किसी व्यक्ति के, किसी परिवार की नींव क्या है, बुनियाद क्या है, यदि आप पाश्चात्य देश में जाओ तो सब कुछ बहुत चकाचौंध दिख रहा है, परंतु फाउंडेशन क्या है ही नहीं। बहुत सी जगहों पर तो फाउंडेशन ही नहीं है, बुनियाद ही नहीं है, नींव ही नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद का यह उदाहरण बहुत उपयुक्त है कि धर्मस्य, जब भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य, तो धर्म को यदि हमें विशेष रूप से इस धार्मिक समाज में हम जो पैदा हुए हैं, इस धार्मिक देश में जो हम पैदा हुए हैं, अभी भी ये संस्कृति हमसे छूटी नहीं है, प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने इसका पुनरुत्थान किया है, तो ये संस्कृति का पालन करने के लिए हमें हमारे स्वयं की व्यक्तिगत बुनियाद, पारिवारिक, सामाजिक, पूरे विश्व में यदि इसको फैलाना है, तो हमारा जो राज्य है, ये देश है, इसकी बुनियाद, इसकी नींव को आधारशिला बनाकर जब हम अपना जीवन जिए, तब जाकर भगवान के इस श्लोक के पहले लाइन को हम सिद्ध करेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हमारे पार्ट फोर में हम जो धर्म की व्याख्या, अंतिम व्याख्या प्रभुपाद ने की है, और वो क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म की रक्षा यदि हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को। श्रील प्रभुपाद की